हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आरव और मंथन को आयु को ढूंढते हुए दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन उन्हें आयु कहीं नहीं मिल रही थी। मंथन बार बार आयु और आरव को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा था। उधर आरव को भी जब आयु नहीं मिली तो उसे लगा कि आयु ने मंथन से बात कर ली होगी। थक हार कर आरव ने मंथन को कॉल किया। आरव ने मंथन को कॉल करते ही तुरंत पूछा, हेलो मंथन, इस वक्त कहाँ हो तुम? ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था आरव सर। मैं कब से आपको कॉल ट्राई कर रहा हूँ, ना तो आपका कॉल लग रहा है और ना ही आयु का। आयु ठीक तो है ना? मंथन ने जवाब दिया। उल्टा वो तो खुद आयु को लेकर परेशान हो रहा था। मंथन को यही लगा था कि उसके घर से निकलने के बाद आरव ने आयु को संभाल लिया होगा। वहीं मंथन का जवाब सुनकर आरव घबरा गया था। आरव का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा था। उसने धीमी कांपती आवाज में पूछा, डोंट टेल मी कि आयु तुम्हारे साथ नहीं है। अब तो सच में मुझे उसकी टेंशन हो रही है। मंथन, एक काम करो, तुम अभी आकर मुझे अपने घर के पास वाले पार्क में मिलो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। आरव के पास आयु के दोस्तों और बाकी लोगों से जुड़े कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे, ऐसे में मंथन ही उसकी मदद कर सकता था। हालांकि मंथन ने जो भी किया था उसकी वजह से आरव उससे काफी निराश था, पर फिलहाल उसे आयु के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद आरव और मंथन दोनों मंथन के घर से कुछ दूर बने पार्क में मिले। आरव काफी घंटे से आयु को ढूंढ रहा था। वो काफी बिखरा हुआ सा लग रहा था और चेहरे से परेशान भी। मंथन को देखते ही आरव तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारे घर से निकलने के लगभग 10 मिनट बाद ही मैं उसके पीछे गया था, पर वो तो जैसे लगता है कि ये प्लैनेट छोड़कर ही कहीं गायब हो गई है, कहीं नहीं मिल रही। मंथन, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि आयु कहाँ जा सकती है? क्या आयु उस टाइम से गायब है और आप अब मुझे बता रहे हैं? मंथन ने नालाजगी जताते हुए कहा। तो आरव उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, ओ रियली? और अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता तो क्या होता? आज वो गायब है तो उसकी वजह तुम हो। मैं उसे अब तक नहीं ढूंढ पाया तो तुम कैसे ढूंढ लेते? तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आया हूं तो सिर्फ आयु की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया हूं कि तुमने क्या किया था। मंथन की नजरें नीची हो गई थीं। आरव का कहना सही था। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, कई बार मैं सच में अपनी फैमिली के आगे मजबूर हो जाता हूँ। मैंने आज उसका बहुत दिल दुखाया है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अपना ये अफसोस बाद में मना लेना, मुझे बताओ आयु कहाँ हो सकती है? क्या उसकी कोई फ्रेंड या कोई और है जिसके यहाँ वो रहने के लिए जा सकती है? आरव ने पूछा। उसे आयु के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका चंडीगढ़ में कोई नहीं है, रहने के लिए ठीक ठाक घर भी नहीं मिल रहा था, तभी वो मेरे साथ रह रही थी, मंथन बोला। और तुमने ही उसे बेघर कर दिया। अपने घर वालों से गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं लड़ पाए, लेकिन उसे अपनी किराएदार बताकर घर पर रख सकते थे। तुम, खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। मुझे ये बताओ कि क्या वो अपने पेरेंट्स के पास लुधियाना जा सकती है? आरव ने काफी कड़वाहट भरे लहजे में कहा। हालांकि आरव ने एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक पर पूछताछ करवा ली थी, लेकिन आयु वहां नहीं आई थी। पिछली बार उसकी जयजी के साथ आयु को लेकर बहस हुई थी, इसलिए वो डायरेक्ट कॉल करके भी उन्हें आयु के बारे में नहीं पूछ सकता था। आयु उसकी जिम्मेदारी थी। अगर आज सुबह गौरवी जी ने आयु के सामने मंथन और आरव में से किसी एक को चुनने की शर्त नहीं रखी होती तो आरव कभी उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ता। अनफॉर्चुनेटली उसका अपने मॉम डैड के साथ में रिश्ता इतना भी सही नहीं है जितना लोगों को दिखता है। उनके रिश्तों के बीच एक अलग ही तनाव है, तभी आयु उनके साथ नहीं रहना चाहती, मंथन बोला। आरव ने गहरी सांस ली। उसने सर पकड़कर मन ही मन कहा, लगा ही था कि तुम उनके पास नहीं जाओगी। खैर, फिलहाल तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो आखिरी ठिकाना तुम्हारे पेरेंट्स का घर ही था। अगर तुम वहां नहीं गई हो तो कहाँ हो आयु? आरव आयु के बारे में सोचते हुए उसके ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं मंथन भी यही सोच रहा था कि आयु इस वक्त कहाँ जा सकती थी। वैसे तो आयु की अपने पेरेंट्स से नहीं बनती है, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत क्लोज है। हो सकता है कि उसने अनु से बात की होगी, क्यों ना हम उसे कॉल करके पूछें, मंथन ने सुझाव दिया। मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तुम कॉल करो और कॉल स्पीकर पर रखना, आरव ने जवाब दिया। मंथन और आरव दोनों इतना घबरा गए थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन में उनके पास अनुष्का को कॉल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उधर अनुष्का ने देखा कि उसके पास मंथन का कॉल आया है तो वो बहुत खुश हो गई। अनुष्का को लगा कि मंथन ने उसे कॉल किया है, लेकिन इसके कॉल रिसीव करते ही मंथन ने हड़बड़ाहट भरे स्वर में कहा, अनु, आयु से बात हुई तुम्हारी? अनुष्का, जो मंथन के कॉल आने पर खुश हो गई थी, उसके मुंह से आयु का नाम सुनकर उसका मुंह उतर गया था। उसने खुद को शांत करके सामान्य लहजे में कहा, नहीं, यहां से जाने के बाद उसकी किसी से बात नहीं हुई। हाँ, डैड ने बताया था कि डिजायर्स में मीटिंग के दौरान वो आयु से मिले थे, और वो न्यूज वाला कांड तो तुम्हें सब पता ही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि मंथन कुछ बोलता, आरफ बीच में बोल पड़ा, नहीं, कुछ ठीक नहीं है, आयु मिल नहीं रही है। क्या तुम बता सकती हो कि आयु अगर परेशान होती है तो कहां जाती है? अनुष्का ने आईज रोल की और सख्त लहजे में कहा, ओ तो तुम भी इसके साथ ही हो। अब बताओ क्या किया तुमने ऐसा जो आयु इतनी परेशान हो गई और कहीं चली गई? डैड ने मुझे बताया था आयु तुम्हारे साथ रहने की जिद कर रही थी। समझ नहीं आता कई बार उसे क्या हो जाता है। दो ही दिनों में तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? आरफ तुरंत बोला, एक्सक्यूज मी, तुम पूरी बात जाने बिना मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। इस बार तुम्हारे लाडले मंथन ने ही सारा मैटर बिगाड़ा है। मंथन का जिक्र होते ही अनुष्का चौंक गई थी। उन सबको यही लगता था कि आयु के लिए मंथन से बेहतर लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता। अनुष्का ने हैरानी से पूछा, मतलब? मैं समझी नहीं, आयु के गायब होने के पीछे मंथन का हाथ कैसे हो सकता है? मंथन नहीं चाहता था कि अनुष्का के सामने उनके घर का झगड़ा आए। वो आरफ के कुछ भी बताने से पहले जल्दी से बोला, अभी समझाने का टाइम नहीं है अनु, हमें बस जल्द से जल्द आयु को ढूंढना होगा। वो किसी वजह से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास आई होगी। प्लीज पैनिक मत करना और घर में किसी को मत बताना। मैं पैनिक नहीं हो रही और ना ही किसी को इस बारे में बताने वाली हूँ। तुम दोनों डरो मत, आयु इतनी भी वीक नहीं है कि वो कोई गलत कदम उठाए। वो बहुत स्ट्रांग है, अपने लिए जरूर उसने कोई ना कोई रास्ता बना ही लिया होगा। अगर वो तुम दोनों से बात नहीं करना चाहती, इसका मतलब यही है कि वो तुम दोनों से दूर रहना चाहती है। जब उसका मन होगा तो वो अपने आप वापस आ जाएगी, अनुष्का ने काफी रिलैक्स होकर जवाब दिया। और वापस नहीं आई तो? आरव ने परेशान लहजे में पूछा। तो तुम जाकर अपनी उस माही बेबी से शादी कर लेना, अनुष्का ने तिरछा मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया था।
आरव और मंथन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। ऊपर से अनुष्का ने भी ठीक से कुछ नहीं बताया था। मंथन ने आरव को आश्वासन देते हुए कहा, बिलीव मी, आयु को अपनी बहन से बेहतर कोई नहीं जानता है, वो उसकी ट्विन सिस्टर है। आयु के गायब होने की बात सुनकर भी अनु इतना रिलैक्स होकर बात कर रही है, इसका मतलब वो सही कह रही थी। आयु नाराज होने पर खुद ब खुद मान जाती है, तो इस बार भी आ जाएगी। आयु के बिना आरफ का वहां से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया। मंथन और आरफ वापस अपने अपने घर की तरफ निकल गए। उनके हिसाब से अनुष्का इकलौती वो इंसान थी जो आयु के बारे में सब कुछ जानती समझती थी। अगर उसने दोनों को आश्वासन दिया है तो झूठा आश्वासन नहीं दिया होगा। आयु जहां भी होगी ठीक ही होगी। आरव और मंथन एक दूसरे को दिलासा देकर वहां से चले तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अभी भी आयु के न मिलने का गम खटक रहा था। आरव वापस अपने घर आ चुका था। उसने किचन में जाकर फ्रिज खोला तो उसमें कुछ वाइन की बोतलें पड़ी थीं। आरव ने वहां से एक बोतल उठा ली और हॉल में लेकर चला गया। आई नो मिसेस खुराना, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ आज, लेकिन तुम्हारा दिल टूटते देख मुझे भी खुशी नहीं हुई। भले ही मैं तुम्हें प्यार करने लगा और मेरे लिए प्यार का मतलब जुनून होगा, लेकिन तुम्हारे साथ इन दो दिनों में मैंने बहुत सुकून महसूस किया। जैसे जिंदगी में जो कुछ भी चाहा था वो सब मिल गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा आयु, वरना मैं पहले भी तुम्हें कभी हर्ट नहीं करता। कहाँ हो तुम? प्लीज़ आ जाओ ना वापस मेरे पास। आई प्रॉमिस इस बार तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा, आरव ने भारी आवाज़ में कहा। आयु के जाने का गम भुलाने के लिए उसने खुद को शराब के नशे में डुबाने का फ़ैसला किया। वहीं दूसरी तरफ मंथन के घर से निकलने के बाद आयु इस कदर टूट गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब भी उसका मूड खराब होता था या उसे कुछ समझ नहीं आता था तो वो समय बिताने के लिए चंडीगढ़ के ही एक अनाथाश्रम में चली जाती थी। इस बारे में मंथन तक नहीं जानता था। जैसे ही आयु वहां पहुंची और उसने कुछ बच्चों को गार्डन एरिया में खेलते हुए देखा, आयु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। आयु वहां उनसे दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। वो आयु की तरफ बढ़ते हुए बोली, लगता है आज तुम फिर परेशान हो, तभी इन बच्चों के साथ समय बिताने यहाँ पर आई हो। अच्छा बताओ, इस बार ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें यहाँ इतनी दूर आने पर मजबूर कर दिया? आयु ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो वहाँ अनाथ आश्रम की ही टीचर थी जिसके साथ आयु की अच्छी दोस्ती हो गई थी। खुद को बहुत रोकती हूँ यहाँ आने से, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। सच में उनके साथ मुझे टाइम बिताकर अच्छा लगता है अवनी। इनमें और मुझ में बहुत सी बातें एक जैसी हैं, बस फर्क है तो सिर्फ इस बात का कि उनके माँ बाप नहीं हैं और मेरे माँ बाप होते हुए भी मैं अनाथ हूँ, आयु ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आयु की आंखों में आंसू देखकर अवनी ने उसे तुरंत अपने गले लगा लिया। वो उसे सहलाते हुए बोली, तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो? कभी उनसे पूछो जो बिना पेरेंट्स के होते हैं, तुम लकी हो आयु, इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हो, मैंने सुना था तुम्हारी शादी भी हो गई है, वो काफी फेमस और अमीर बिजनेसमैन है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम खुद को इन बच्चों से कैसे कंपेयर कर सकती हो? सब कुछ होकर भी ऐसा लगता है अवनी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, यहाँ तक कि आज तो मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं है, न मेरी फैमिली मेरा साथ देने के लिए है और न ही मेरा पति, यहाँ तक कि जिससे प्यार किया था उसने भी मुझे छोड़ दिया है, आयु ने जवाब दिया, वो अवनी से अलग हो गई थी। मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अवनी ने आयु को दिलासा दिया। फिलहाल तो मुझे मेरे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, मुझे किसी पर अब और बोझ नहीं बनना है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लाइफ में अब तक हमेशा गलत फैसले ही लिए हैं, पहले मंथन पर डिपेंडेंट होना, बाद में अपनी फैमिली से लड़कर आरव के साथ जाने का डिसीजन लेना हो, या फिर आरव को छोड़कर वापस मंथन के पास जाना, मुझे खुद ही अपनी लाइफ संभालनी होगी, आयु ने जवाब दिया। आयु किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी, उसके हिसाब से उसके साथ जो भी हुआ उन सब में उसके ही गलत फैसले थे जिसका ये नतीजा निकला था। आयु एक मजबूत शख्सियत थी और उसने खुद को तुरंत ही संभाल लिया था। जैसा कि अनुष्का ने कहा था, आयु गलत कदम उठाने में नहीं बल्कि अपनी की गई गलतियों को ठीक करने में बिलीव करती थी। वहीं आयु को इस तरह संभले हुए देखकर अवनी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो उसे सहलाते हुए बोली, ठीक है तो फिर आगे से सोच समझ कर फैसला लेना। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने कभी आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत थी। अब तक खुद पर यकीन रखा है तो आगे भी रखो। रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं वार्डन मैम से बात कर लेती हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो। आयु ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। आयु का इरादा इस तरह मंथन और आरव को परेशान करके उनसे दूर जाने का नहीं था। उस वक्त मंथन ने जिस तरह से उसका साथ नहीं दिया था, उसके बाद वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, तो वहीं वापस आरव के पास जाकर वो गौरवी जी के मुंह से ये नहीं सुनना चाहती थी कि मंथन के छोड़ने पर आयु आरव के पास आई है, जबकि सुबह उसने अपनी शादी के बजाय अपने प्यार को चुना था। आयु अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी और इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसके जाने के बाद आरव और मंथन किस कदर परेशान हो चुके हैं।